पृष्ठ संख्या 76। दो विश्व युद्धों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान, ये तीनों दो विश्व युद्धों के बीच की प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये तीनों कुछ काल तक एक दूसरे के मित्र रह चुके थे। यह स्थिति रूसी क्रांति के पूर्व तक चली। युद्ध के बाद रूस को तो बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन संयुक्त राज्य ने शांति संधियों के मसविदे तैयार करने में और इस तरह युद्धोत्तर दुनिया की रचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विश्व की सबसे प्रभुत्वशाली आर्थिक शक्ति बन गया। उधर रूस, जो बाद में सोवियत संघ की स्थापना होने पर उसका हिस्सा बना था, युद्ध क्रांति, युद्ध, गृह युद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप के दौर में यूरोप के सर्वाधिक छत विछत देश के रूप में सामने आया। तथापि 1930 वाले दशक के अंत तक रूस एक प्रबल आर्थिक तथा सैनिक शक्ति का रूप लेकर उभरा। अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के कारण वह विश्व के शेष भाग से भिन्न दिखने वाला और दुनिया के मामलों में उसने एक विशिष्ट भूमिका निभाई। जापान इस युद्ध के फलस्वरूप एवं एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की प्रबलतम शक्तियों के रूप में उभरा और उसमें इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिस वर्साय संधि का मसविदा तैयार करने में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसको अमेरिकी सीनेट ने नामंजूर कर दिया। संयुक्त राज्य ने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, यद्यपि यह संस्था बहुत हद तक स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति की देन थी। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के 1920 के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ने विल्सन की डेमोक्रेटिक पार्टी को हरा दिया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों ने आगे 1924 और 1928 के चुनावों में भी जीत हासिल की। आर्थिक विकास के बावजूद आर्थिक दुख दयनीय। युद्ध के तुरंत बाद के वर्ष संयुक्त राज्य में घोर आर्थिक संकट के वर्ष थे। युद्ध के दौरान यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की तो भारी क्षति हुई थी, किंतु अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। कोई भी लड़ाई अमेरिका की सरजमी पर नहीं लड़ी गई और उसके नगरों, उद्योगों तथा खेत खलिहानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, जो युद्ध का ही परिणाम था। सहसा रुक गया, जिससे एक गंभीर संकट उपस्थित हो गया। लगभग 1 लाख कारोबारियों का दिवाला निकल गया और कोई 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। नतीजतन श्रमिक अशांति फैली और हड़तालों का सिलसिला चला। 1919 में लगभग 3500 हड़तालें हुई, जिनमें लाखों श्रमिक शामिल हुए। ये हड़तालें महीनों चलती रही। हड़तालों को सख्ती के साथ तोड़ा गया और लोगों के मन में रूस की तरह ही क्रांति भड़कने की दहशत पैदा की गई। इसके शीघ्र बाद ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था आबाद गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चली। इस काल में, जबकि बाकी की पूरी पूंजीवादी दुनिया युद्ध जनित विनाश से उबरने की कोशिश कर रही थी, संयुक्त राज्य में प्रौद्योगिकीय उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार आरंभ हो गया। वह विश्व के मुख्य ऋणदाता राष्ट्र के रूप में सामने आया और यूरोप के ज्यादातर देश उसके कर्जदार बन गए। अमेरिकी के जबरदस्त औद्योगिक विस्तार का एक प्रमाण यह है कि 1929 में उस देश में 50 लाख से ज्यादा कारें बेची गई। औद्योगिक विस्तार के साथ साथ इस देश की आर्थिक सत्ता और भी कम हाथों में केंद्रित होती चली गई। हजारों छोटी छोटी कंपनियों को चंद बड़ी कंपनियां निगल गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक खास विशेषता विभिन्न उद्योगपतियों के बीच की स्पर्धा थी। अब इस नई परिस्थिति में यह स्पर्धा लगभग समाप्त हो गई। कुछ मामलों में तो, जैसे कि इस्पात के संबंध में, लगभग पूरा का पूरा उद्योग एक ही कंपनी के हाथों में आ गया। इन कंपनियों पर अपरिमित प्रभाव था। कहावत चल पड़ी थी कि जो बात जनरल मोटर्स के लिए अच्छी है, वह पूरे अमेरिका के लिए अच्छी है। यह कंपनी कारों की प्रमुख निर्माता थी। आर्थिक शक्ति के थोड़े से हाथों में सिमट जाने से भ्रष्टाचार बढ़ा और बहुत से ऐसे घोटाले हुए जिनमें राजनीतिज्ञ तथा शीर्षस्थ अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन इस अभूतपूर्व आर्थिक विकास से श्रमिकों की कोई भलाई नहीं हो पाई। उनमें से अधिकांश गरीबी और दुख में दिन बिताते रहे। मजदूरी तो कम ही थी, ऊपर से रोजगार को खोने का डर तथा उसका खतरा बना रहता था। कंपनियों को बहुधा सरकार और अदालतों का समर्थन मिलता था और पुलिस तथा किराए के गुंडों के बल पर अक्सर श्रमिकों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाइयां की जाती थी, जिसके फलस्वरूप कोई शक्तिशाली श्रमिक आंदोलन नहीं उभर कर आ पाया। 1929 का घोर संकट। यह अभूतपूर्व औद्योगिक विस्तार वैसी ही अभूतपूर्व विपत्ति के सागर में डूब गया। 1929 के आरंभ में नव निर्वाचित राष्ट्रपति हार्वर्ट हूवर ने घोषणा की, हमारा देश संसाधनों से परिपूर्ण है, मन को प्रेरणा और स्फूर्ति देने वाली भव्य सुंदरता से संपन्न है, सुख सुविधा और अवसरों का उपयोग करती लाखों गृहस्थियों से भरपूर है। उसने आगे कहा कि देश का भविष्य उज्जवल और आशाजनक है। इसके कुछ ही महीने बाद 24 अक्टूबर 1929 को एक धमाके की तरह संकट शुरू हो गया, जिसे महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समहित था। उसका विस्तार होता गया, उसके मुनाफे बढ़ते गए, लेकिन दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफों के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ उत्पादित किया जाता था तो उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। गैर कृषक आबादी का 5 से 7% हिस्सा इस सदी के पूरे तीसरे दशक के दौरान बेरोजगार रहा। लगभग दशक भर के अभूतपूर्व औद्योगिक विकास के बावजूद अमेरिका में आधे से ज्यादा परिवार किसी तरह गुजारा भर करने लायक थे या इससे भी बदतर हालत में जी रहे थे। जो माल उत्पादित किया जा रहा था, उसे खरीदने की स्थिति में वे बिल्कुल नहीं थे। अनुमान लगाया जाता है कि 1929 में पूरी व्यक्तिगत आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा आबादी के 5% लोगों के हाथों में चला जाता था। ऐसे लोग जिन्हें कि किसी भी अर्थ में अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी प्रणाली का आलोचक नहीं कहा जा सकता, ना भी यह स्वीकार किया है कि क्रय शक्ति का बुनियादी असमान वितरण इस घोर संकट की शुरुआत का एक मुख्य कारण था। शेयरों की कीमतों में गिरावट आने के साथ संकट शुरू हुआ। कीमतें गिरने से लोग घबराहट में अपने अपने शेयर बेचने के लिए दौड़ पड़े। इससे शेयरों की कीमतों में और भी कमी आई। फलतः शेयर बाजार बिल्कुल धराशाही हो गया। इसके बाद बैंकों का दिवाला निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। 1929 और 1932 के बीच 5700 बैंकों का दिवाला निकल गया और 3500 बैंकों ने अपने अपने कारोबार समेट लिए। बैंकों के दिवालिया होने से लाखों अमेरिकियों की जीवन भर की कमाई डूब गई। इसका मतलब यह था कि लोगों के पास खरीदारी करने के लिए और भी कम पैसा रह गया। उद्योगों को बैंकों से कर्ज नहीं मिल सकते थे और जो माल वे तैयार करते थे वह बिक नहीं पाता था। फलतः उद्योग बंद होने लगे। इससे और भी लोग बेरोजगार हो गए और चीजों की मांगों में और भी कमी आ गई, जिसके फलस्वरूप और भी कल कारखाने बंद हो गए। 1929 में बेरोजगारों की संख्या 15 लाख थी, जो 1930 में 50 लाख, 1931 में 90 लाख और 1932 में 1 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गई। इसका मतलब यह था कि 1932 में संयुक्त राज्य के कुल श्रम बल का 25% से अधिक भाग बेकार था। किसानों की हालत भी शहरी मजदूरों से बेहतर नहीं थी। कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट आई। लाखों किसानों की जमीन उनके हाथों से निकल गई और वे निराश्रय हो गए। नस्ली भेदभाव। 1930 का दशक अमेरिकी जनता के लिए एक भयावह काल था। सबसे बुरी हालत काले लोगों की थी। उनमें 2 लाख से अधिक सैनिक थे जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के मोर्चे पर भेजा गया था। घर लौटकर उन्होंने पाया कि उनके खिलाफ नस्ली भेदभाव और भी तीव्र हो उठा है। गोरों की भीड़ों द्वारा कालों की हत्या की वारदातें बढ़ गई थी। यहाँ तक कि लड़ाई से लौटे काले लोगों को भी अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। गोरों की भीड़ उनकी हत्या तक कर देती थी। नस्ली अलगाव और भेदभाव पूरे देश में फैल गया था और यह दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गया था। देश के कई हिस्सों में गोरों के कू कलकस क्लान जैसे आतंकवादी गिरोह सक्रिय हो गए थे। अब केवल काले लोग ही नहीं बल्कि यहूदी, विदेशी और नस्ली तौर पर अशुद्ध माने जाने वाले अन्य समुदाय भी उनकी हिंसा के शिकार हो रहे थे। महामंदी के दौर में अमेरिका के काले लोगों की स्थिति और भी खराब हो गई। गोरों की मांग थी कि जब तक हर एक गोरे को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी रोजगार कालों को ना दिया जाए। लाखों काले लोग दक्षिण राज्यों में प्रवास करके उत्तर चले गए, लेकिन वहाँ भी स्थिति बेहतर नहीं थी। अनुमान लगाया गया कि 1932 में अमेरिका के कालों में से लगभग एक तिहाई लोग बेरोजगार थे और एक तिहाई के पास पूरा बेरोजगार नहीं था। 1930 वाला दशक अमेरिकी समाज में आमूल परिवर्तनवाद का भी काल था। इस कालावधि में वहाँ एक प्रबल श्रमिक आंदोलन भी उभरने लगा था। समाजवाद की हिमायत करने वाले आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन भी वहाँ आरंभ हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी का गठन पहले ही हो चुका था। इस अवधि में उसकी भी शक्ति बढ़ी और उसने काले और गोरे श्रमिकों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काले लोगों ने भी नस्लवाद से लड़ने के लिए स्वयं को गठित किया। ऊपर हम NAACP की चर्चा कर चुके हैं। नस्लवाद के खिलाफ चलाई गई लड़ाई तथा गोरे और काले श्रमिकों को संगठित करने में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में दो सरासर अन्यायपूर्ण मुकदमों ने संयुक्त राज्य को हिलाकर रख दिया। इस मुकदमों के खिलाफ अनेक दूसरे देशों में भी विरोध का प्रबल स्वर उठा। इनमें से एक मुकदमा था शैको और वेनजेती नामक दो इतावली आप्रवासियों का। उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ जुटाए गए सबूत आमतौर पर संदेह की नज़र से देखे गए। दोनों को मृत्युदंड दिया गया। अमेरिका तथा दुनिया के अन्य भागों में आमतौर पर यह माना गया कि ये दोनों निर्दोष थे और उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया गया था ताकि इस भय को बढ़ावा दिया जा सके कि संयुक्त राज्य को तोड़फोड़ करने वाले तत्वों की ओर से क्रांति का खतरा है। दुनिया भर में मुकदमे की फिर से सुनवाई करने की मांग उठी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया और सैको तथा वेनजेती को फांसी पर लटका दिया गया। दूसरा ऑस्कॉट सबरो मुकदमे के नाम से जाना जाता है। यह वस्तुतः नस्लवाद का प्रासंग था। 1931 में दो गोरी वेश्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 9 काले लड़कों पर मुकदमा चलाया गया। जूरी के सभी सदस्य गोरे थे। उन्होंने 9 में से 8 को मृत्यु दंड दे डाला। इस मामले को आमतौर पर लोग बिल्कुल मनगढ़ंत मानते थे। इन लड़कों को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान छिड़ गया जिसे विश्व जनमत का समर्थन भी प्राप्त था। इस मामले में मृत्यु दंड पर अमल तो नहीं किया गया, लेकिन इनमें से ज्यादातर लड़के कई साल तक जेल के शिक्षों के पीछे सड़ते रहे। नई नीति। 1929 की रजा महामंदी और रजामंदी का युग आर्थिक इतिहासकार के रिएक्टर स्केल पर नापा गया इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप कहा गया है। इसकी शुरुआत तो अमेरिका से हुई, लेकिन अंत में उससे यूरोप के सभी देश प्रभावित हुए और उसका कमोवेश असर दुनिया के प्रत्येक देश पर पड़ा। यूरोप के लिए उसके परिणाम बहुत गंभीर हुए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अमेरिका में आर्थिक संकट के कुछ गंभीरतम परिणामों का निवारण 1933 के बाद से आरंभ हो गया। यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व काल में हुआ, जो सर्वप्रथम 1932 में इस पद के लिए निर्वाचित हुए और उसके बाद लगातार 3 बार चुने गए। उन्होंने सुधार का जो कार्यक्रम चलाया उसे नई नीति कहते हैं। जन कल्याण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे आबादी के कई वर्गों के कष्टों में कमी आई। यद्यपि महामंदी का असर संयुक्त राज्य के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाने तक बना रहा, रूजवेल्ट को सामान्यतः काले लोगों का हमदर्द माना जाता था, लेकिन वास्तव में उनकी अवस्था सुधारने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व संयुक्त राज्य के राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर देने से उस संस्था को बहुत बड़ा आघात लगा। इस दौर में संयुक्त राज्य मुख्य रूप से दुनिया के शेष भागों में अपने आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करने में जुटा हुआ था। विश्व अर्थतंत्र पर अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व का यूरोप तथा शेष विश्व पर गंभीर प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य ने 1920 वाले दशक में जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों को भारी कर्ज दिए, जिससे यूरोप को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिली, लेकिन इन देशों को अमेरिका पर निर्भर होने के विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। संयुक्त राज्य को शुरू में चीन में जापान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा की फिक्र हुई, क्योंकि उससे अमेरिका के आर्थिक हितों को हानि पहुंच सकती थी। 1922 में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि का उद्देश्य चीन में खुले द्वार की नीति को सुनिश्चित करना था, ताकि कोई देश चीन पर अपना एक छत्र नियंत्रण स्थापित ना कर सके। इस संधि से जापान की नौसैनिक शक्ति पर भी कुछ अंकुश लगा, लेकिन तब भी वह प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत बना रहा। 1931 में जापान द्वारा तथा बाद में जर्मनी और इटली द्वारा आरंभ किए गए अतिक्रमणों पर अंकुश लगाने के झंझट से अन्य पाश्चात्य देशों की तरह अमेरिका भी बचता रहा। 16 साल तक वह सोवियत संघ की सरकार को मान्यता देने से इनकार करता रहा और बाद में चीन की सरकार को मान्यता देने में उसे 20 वर्ष लगे। लैटिन अमेरिका में संयुक्त राज्य के आर्थिक प्रभुत्व में और भी वृद्धि हुई और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपति होने के पूर्व तक उसने मामलों में संयुक्त राज्य प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप करता रहा। लैटिन अमेरिका पर संयुक्त राज्य के प्रभुत्व या लैटिन अमेरिकिया द्वारा प्रयुक्त मुहावरे का उपयोग करें तो यांकी साम्राज्यवाद के खिलाफ उनमें व्यापक रोष फैला।